Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
I should speak both in English and Hindi, so please pay attention. We are getting together here to initiate a ceremony, which is called initiation itself. But initiations are coming in gradual steps, but it must begin. It must be begun. Without beginning of this process, one cannot become regularized in his sadhana or the process which is required that will take us back to God. Everybody knows Hare Krishna Maha Mantra, but still it is emphasized that one should follow in the disciplic succession and receive the mantra. Because mantra itself is Lord Krishna. There is no difference between the holy name and the Lord, but it should be received through parampara, means the strength of the parampara and its conclusion will be also received to you. And personal relationship with your guru that fructifies in gradual development of our bhakti, that is the process. And that will take us back to Godhead. So in this way, one cannot directly approach Krishna, who is very inconceivable. One cannot even receive the mercy of the holy name directly, even though if we may get liberation. But liberation is not enough. The real mercy of the Lord is coming out of the love of the Lord, not giving somebody some siddhis in liberated state, or even a misconception of thinking that he is of the supreme nature. And ultimately he can also become God himself. So these are the results of the holy name without proper guidance. An impersonalist may also chant Hare Krishna Mantra, but he doesn't have faith in the personality aspect of God. So it is better that we have to accept in a very channelized, very secured pathway that Srila Prabhupada brought us, and take the regularization of the process. Those who are receiving Harinam Diksha, they are called that they are getting first initiation. Those who are getting second initiation means there is a second phase beginning. Initiation is to begin, but the second phase is beginning. So in that case, the second phase has to be understood also. So for that reason, they are getting at least qualified or approval to progress further than what they have already progressed. Without progressive report, one cannot get the second even. What to speak of other advancement and another type of initiation that is required later on, if at all one wants to become fully dedicated in either renounced order. Such initiation can be awarded to Mataji is also in the renounce order, that is up to Vanaprastha only. But one who has to make a daring effort to go out fearlessly and preach the philosophy of Krishna consciousness, then they are given a danda, a very austere situation. While Mataji stay at home, become renounced under the protection of her son. And otherwise, if they do not have the family or family relations with anybody, or they may not be interested, they can take shelter of Srila Prabhupada and his institution and remain safe. So the idea is that initiation is beginning of different stages. So we need to become aware of the security which is obtained through the first initiation. What are the pitfalls? How do we have to protect our sadhana? Everybody is given a uniform instructions. Therefore, these instructions are special. If somebody has difficulty, then personal instruction can be given. But because of the difficulty, he was experiencing some extra need of help. But the general instructions are capable enough, if one takes seriously, to remain in association with the devotees, and general instructions are capable enough to take us back home, back to Godhead. यहाँ हम आज दो प्रकार की दीक्षा दे रहे हैं, पहली हरिनाम की और दूसरी ब्राह्मण इनिशिएशन. दीक्षा अंग्रेजी शब्द में ये बताता है कि शुरुआत, लेकिन दीक्षा के पीछे भावार्थ है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, दिव्यता का परिचय करना. हमारी ये भौतिक अवस्था में हम दिव्यता का परिचय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भूल गए. आत्मा है, आत्मा दिव्य होता है, लेकिन ये भौतिक संसार में तमोगुण के माध्यम से वो अज्ञानी बन गया है. अपने बारे में उसको जानकारी नहीं है. इसलिए जब धर्म का विषय होता है तो आत्मा को धारण करने वाला जो विषय है उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए. इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु के माध्यम से हम अपनी प्रगति करके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. दिव्य ज्ञान शास्त्र देता है, इसलिए शास्त्र जैसे समझाता है वैसी दृष्टि बनानी चाहिए. तो शास्त्र की दृष्टि से हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हृदय में दिव्यता का परिचय होता है. जैसे हम आपको पहले शुद्धिकरण करवाने के लिए भगवान के नाम का संकल्प करवाया, तो नाम की शक्ति का परिचय करना है कि शुद्धता आती है. अपने जीवन में यदि हम जैसे हैं वैसे चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे, सिर्फ दीक्षा ले लो, लेकिन उसे न तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है इसी भावना से, न तो कोई आगे हमारी प्रगति होती. तो प्राथमिक दीक्षा में जो आदेश आपको मिलेंगे उससे खूब सावधानी से पालन करना होता है. इसमें खास करके क्या क्या पालन करना है, कैसे समझ हमें आनी चाहिए, कैसे हमें भगवान के नाम में जो अपराध होते हैं उसे बचने की आवश्यकता होती है, तो कैसे समझना चाहिए, ये सब अभी संक्षिप्त में बता देंगे। लेकिन उसका अनुभव करना पड़ेगा कि जैसे आप अपराध करते बचोगे। दूसरी दीक्षा में जो प्रगति कर रहा है व्यक्ति, उनको दोबारा अपने जो वचन दिए थे तो उसका अनुपालन करने के लिए फिर से तैयारी रखनी चाहिए। इनसे पूछेंगे कि प्रभु आर यू रिकन्फर्मिंग योर वाउज दैट यू हैव गिवन इन द फर्स्ट इनिशिएशन, एंड यू से यस, दैट्स गुड इनफ फॉर दैट। लेकिन पहली दीक्षा वालों को पूछेंगे कि भैया माता जी जो अब चार नियमों का पालन जानते हैं, क्योंकि नाम हमें मुक्त करने वाला है, नाम के साथ जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा हमें अपनी भौतिक अवस्था में जो तीन गुणों हमें सताते रहते हैं उनसे बचने के लिए, खास करके ये कलयुग में जो निषेध बताया है, तो उसका पालन करने के लिए तैयारी नहीं पूछेंगे। यदि हाँ है तो हम स्वीकारेंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग जो पद्धति के लिए हमें तैयारी रखनी है, तो इसका मौका ये दीक्षा विधि में आपको व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है। सो टू रिट्रेट द 10 ऑफेंसेस, इंचांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, the first and foremost offense is to blaspheme a devotee who has dedicated his life for propagation of the holy name of the Lord. This is a blanket order of Chaitanya Mahaprabhu to anybody and everybody who has taken diksha in International Society for Krishna Consciousness. We are a preaching movement, and it is our business to preach others. Whatever we receive, whatever we realize, we are supposed to give it to others in order to make them benefit of the mercy of the Lord that is coming through the holy name. Chaitanya Mahaprabhu ने कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, पर लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई को भी हरिनाम करवाया, इनसे भी हरिनाम कर, चाहे कितना वो कठोर था उसने मारा भी नित्यानंद प्रभु को, फिर भी नित्यानंद प्रभु बहुत करुणामय है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि ये शरीरधारी जीवात्मा इस कलयुग में ऐसा घिरा हुआ है कि ये जगाए मधाई जैसा ही बन गया है, हर एक जीवात्मा जगाए मधाई जैसा, तो सबको मारोगे? तो भगवान का नाम का तारण करने का कहां उपाय होगा? इसीलिए जो हरिनाम का प्रचार कर रहा है वो वैष्णव है, भगवान के शक्ति देने का वो प्रयत्न कर रहा है। विनम्रता से हो उसकी प्रगति हो तो अवश्य उसकी सफलता रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब भगवान का नाम का प्रचार करने वाला है तो उसकी निंदा करना भगवान का नाम अपने मत्थे पर, वो अपराध ले लेता है। हाँ, नाम का प्रचार, नाम की शक्ति बिना होता नहीं। यानी कोई प्रचार कर रहा है तो नाम की शक्ति का उसने परिचय किया होगा, तभी तो वो प्रचार करने की हिम्मत रखता है। हाँ, किसकी ताकत है कि ऐसे व्यक्ति का वो अपराध करें, निंदा करके। भगवान का नाम अपना परिचय उसको बता देगा अपराधी को। उसकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो अपराध की क्षमा नहीं मांगेगा। जिसका अपराध किया है उसके पास, तब तक भगवान का नाम नहीं बचाएगा। वो उदाहरण अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त की निंदा करने वाले दुर्वासा मुनि को भी सबक मिला था। We are talking of the first offense that because the potency of the holy name is mercifully encouraging to a devotee in preaching. Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartan. Without the potency of the Lord, you cannot preach. You cannot expand. So if anybody is initiated in ISKCON, he has an obligation. Preach. Yare dekha tare kaha Krishna upadesh. First do that. But Krishna will give the opportunity. Amare agya guru hona tare idesh. Deliver the whole nations. And Chaitanya Mahaprabhu has kindly appeared even in Australia. When Srila Prabhupada installed Gaur Nithai, Mahaprabhu, he gave a lecture, a very, very important lecture. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu has appeared in Melbourne city. It is a very significant statement, because that potency, the mercy of the Lord, will propagate. We can see so many sincere devotees are really getting educated and they are spreading the glories. Become educated and preach. Prabhupada made this institution as an educating institution. Mandir mein sirf log dekhte honge ki ghanti bajate hain. Na na, ghanti bhi bajegi lekin preaching ka bhi fayda milega. Koi dusre mandir mein nahi aisa hai. So, to blaspheme a devotee who has dedicated his life for propagating the holy name of the Lord, such an offense will be not tolerated by the holy name. If holy name cannot tolerate, do you think Krishna is going to tolerate? No. What to speak about others? Nobody will be able to tell them. Now, therefore, an offender has no way to resolve his offense and nullify seven, except he piteously crying at the lotus feet of that offended devotee. And beg his forgiveness. Because he is a Vaishnava, he will definitely give his mercy and will embrace him, will not mind any offense. Means forgiveness is given. If somebody is not a devotee and he does not understand this, to such a person offense will not become any hindrance, but it will be standstill, will not allow him to progress further. He might have a taste, but it is useless. So even unknowingly, one who is preaching, do not discourage him. Do not discourage him. Do not try to criticize him. Do not guide him. No. It is the power of the holy name that is making the way in the heart of the one who is being preached. So we have to respect the holy name. Many a times we see that some people who are not getting initiated, but they are encouraging others to get initiated. Right? But it is an indirect service. It may not be direct service. But sometimes they take initiations. We call just to point a finger in the relative direction is good enough. You know, because he became an instrument to convey the mercy of the holy name. Second offense, Shiv Brahmadi Devata ke namo ko, Bhagwan Vishnu ke naam barabar samajna ya swatantra samajna. To consider the names of Lord Shiva or Lord Brahma to be independent or equal to the name of Lord Vishnu is an offense on the holy name of Vishnu. Because Creator is one, created are rest. If we are chanting, which is the first and foremost process of chanting, hearing and chanting, of the holy name of the Lord, who is the primeval Lord, He is the one who creates everything and anything, and everything is sustained in Him. How come everything that has been created and sustained by Him are equal with Him? No way. For that Supreme Lord Shri Krishna, na chatasya karanam karanam cha vidyate, na tasamasam abhi adhikacha drashyate, parasha shaktir vividi sruyate svabhaviki jnana balak kriyacha. Because the Lord is inconceivable. The holy name is independent and inconceivable too. That how it is becoming merciful. Unless and until you have an aptitude to serve the holy name of the Lord. So when everyone has been created to serve the Supreme Lord, how come a servant becomes more important than the master? So you cannot equate. Jadadaram Hindu sanskar paye hue manyata rakhte hain sab mahan dev hain, Mahadev, Brahma ityadi mukhya mukhya hote hain, lekin Bhagwan ke barobar to nahi hai. Inko भी कभी कभी भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान हो गए क्या? किसी को किस ढंग से भगवान के नाम पर पुकारा जाता है, शास्त्र में दिया है. शुक्राचार्य को भी नारद मुनि भगवान करके बुलाते हैं, हे भगवान. लेकिन जब शुक्राचार्य की अकल ठिकाने आई तब बोले कि तुम्हारे में महान गुण है, ये असुरों को इतना संभालना बहुत मुश्किल है। असुरों के गुरु है शुक्राचार्य, पर नारद मुनि उसे भगवान कहते हैं। इसलिए क्या शुक्राचार्य भगवान हो गए क्या? नहीं, भगवान शब्द पराशर मुनि की व्याख्या के अनुसार षडैश्वर्य पूर्ण एक ही व्यक्तित्व को लागू होता है, वो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जो तत्व से अपने भौतिक अवस्था या प्रकृति में विस्तृत है, वो विष्णु तत्व है। इसलिए विष्णु तत्व परापरोक्ता, ये जो तत्व है, चाहे वो अवतार के रूप में आते होंगे, गुण अवतार के रूप में है, या पुरुष अवतार के रूप में है, या मनवंतर अवतार के रूप में है, या शक्ति आवेश अवतार के रूप में है, ये सभी विष्णु तत्व कैटेगरी में आ सकते हैं, सिवाय के शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार जीव तत्व में भगवान की शक्ति का आवेश होकर हमें भगवान की शक्ति का परिचय कराते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद 11 साल की अवधि में प्रभुपाद ने जो सिद्धि हासिल की है, करके बताई है, वो भगवान की शक्ति का परिचय है। बूढ़े आदमी में तो होती नहीं, भगवान की शक्ति का परिचय। तो भगवान की शक्ति का आवेश जब आता है और हमें साक्षात परिचय करवा के इनकी दिव्यता का की महत्ता बताता, तो ऐसा परिचय फालतू नहीं होता। ये भगवान की शक्ति का परिचय करना, भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, और ये भगवान कैसे हैं जो अभी तक अचिंत्य थे, तो इन पर चिंतन करने के लिए ये माध्यम बहुत आवश्यक है। जो भगवान की शक्ति का परिचय कराता है, जब कृष्ण प्रचार करने वाले, भगवान का नाम का प्रचार करने वाले भक्त लोग अभी इसी तरह दूसरे को उत्तेजन देकर परिचय करवाते हैं, तो क्या उसमें दिव्यता का परिचय नहीं होता है? सिद्धांत यह है कि कृष्ण भगवान की शक्ति के बिना परिचय करना असंभव है। जब ये शक्ति भगवान के नाम में मिल रही है, तो देवताओं के नाम में नहीं मिलती, भगवान के नाम में ही मिलती, क्योंकि देवताएं सारे सृजित हैं, उनका सृजन हुआ है, और इन लोगों की भी अवधि होती है। हमसे काफी लंबा जीते होंगे, इसलिए इनका ये नहीं मानना कि ये लोग अमर हैं। इसी तरह कई देवताओं को भी भगवान के नाम से संबोधन किया जाता है, पर लेकिन वो आदि पुरुष जो है कृष्ण भगवान, इनका ही तो रिफ्लेक्शन करते हैं, स्वयं का नहीं। इसलिए जब शुक्राचार्य को नारद मुनि ने भगवान कहकर संबोधन किया, तो वो शर्मिंदे हो गए, हम लायक नहीं है, फिर भी देखो ये हमारा बहुमान कर रहा है। कैसे हो भगवान, आप कैसे हो? भगवान करके बुलाते हैं, आप ठीक तो हो ना भगवान? अरे भगवान के प्रतिनिधि भी भगवान कहलाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वयं भगवान है। नहीं, स्वयं भगवान अवतारे भी नहीं कहलाते, स्वयं भगवान अवतारे भी नहीं कहलाते, कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहना पड़ता है। ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो अंश कला ये तो भगवान का स्वयं का विस्तार है, और कई मर्यादित मात्रा में होता है, लेकिन भगवत्ता का परिचय भी होता है। चलो हम भगवान के अंश हैं, हमें अपनी दिव्यता का परिचय हुआ ये भक्ति के मार्ग में, हम भगवान के प्रतिनिधि भी बन सकते हैं क्या? इसलिए क्या प्रतिनिधित्व करने वाला अपने आप को भगवान मानेगा क्या? हर एक जीव भगवान का अंश है, दिव्य है, छोटा सा तो छोटा लेकिन वो दिव्यता का परिचय करने के लिए लायक है। इसीलिए स्थान भेद समझने की आवश्यकता है। शुक्राचार्य समझ गए कि भैया हम तो ये भौतिक दुनिया में पड़े हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? हमने तो भगवान का अनादर किया था, भगवान ने हमारी आंख फोड़ दी, क्योंकि ये चमड़ी की आंखों से नहीं दिखाई देते। भगवान ने शुक्राचार्य की आंख फोड़ी तो आंख फोड़ने का क्या मतलब है? उनको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, इतना ही तो कहा ना। शुक्राचार्य जरा दिव्यता की दृष्टि से देखो, यूं कह अंधा उल्टा ज्ञान देकर आप अपनी भक्ति में बाधा मत डालो। इसलिए शुक्राचार्य को हटा दिया था। आपको पता है ना कि बलि महाराज जब जब वामन देव को 3 कदम भूमि का वचन देते हैं, दान देना चाहते हैं, तो वचन देना पड़े संकल्प से, तो संकल्प में पहले पानी जैसे हाथ में लगाते हैं, संकल्प बोलवाते हैं, तो शुक्राचार्य को पसंद नहीं था कि ये बलि सब कुछ दे देगा, उनको तो पता है कि ये विष्णु है, लेकिन ये राक्षसों के गुरु होने के कारण उन्होंने मना किया कि बलि तू मत दे, ये तुझे झूठ बोलकर सारा तेरा कुछ ले लेगा। तो बलि ने कहा अरे ये भगवान यदि है तो लेने दो, इनका ही तो सब कुछ है, मुझे क्या लेना देना है। तो शुक्राचार्य बढ़ गए, उसने श्राप दे दिया, बलि तो नरक में चला जाएगा, मेरा कहना मानता नहीं है। लेकिन बलि महाराज तो संकल्प देने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने क्या करा कि शुक्राचार्य ने वो जो कमंडलू में से पानी हाथ में देते हैं तो कमंडलू की नोक में घुस गए अपनी शक्ति सिद्धि के द्वारा कि पानी ही नहीं जाए, संकल्प कैसे। तो भगवान ने एक दर्प लिया और घास सूखा घास और उसकी वो कमंडलू की नोक में घुसाया तो वहां शुक्राचार्य की आंख में लग गया, तो फूट गई आंखें। तो शुक्राचार्य रोते रोते बाहर निकले, तब इसका बंडा फूटा, देखो यही तो बीच में बाधा डालता था भगवान को, जो भक्त अपने आप को समर्पित करना चाहे बीच में बाधा डालता, उसको दिव्यता की दृष्टि है ही नहीं, इसलिए आंख फूट गई। लेकिन जब बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया तब ये शुक्राचार्य कहेंगे हम भी तो गए काम से, हमें भी तो भगवान को शरणागत होना ही पड़ेगा जबरदस्ती से। इसीलिए वो थोड़े दब गए थे, उसमें निराशा प्राप्त हुई थी, तो नारद मुनि ने जाकर उनको थोड़ा उत्तेजन दिया भगवान कह के बुलाकर, और शर्मिंदे बन गए। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि भगवान एक होते हैं और षडैश्वर्य पूर्ण इनकी जो व्याख्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं की भी व्याख्या है, वो परम सत्य भगवान के बारे में होता है, उसको ही लागू होता है, अन्य सृजित है। ये चतुश्लोकी भागवत में भी कहा गया, इसलिए कोई भी देवता चाहे शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो, ये भौतिक सृष्टि के सृजन में ही इन लोगों का योगदान है, और वो भी भगवान ने अपना रूपांतर करके किया, इसलिए स्वयं भगवान नहीं रहे, गुणावतार में आते हैं शिव जी, भगवान के गुणावतार में शिव जी का स्थान है, इसलिए हम आदि पुरुष जो स्वयं भगवान है इनको ही भगवान स्वीकार के आगे चढ़ेंगे। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र हम लेते हैं तब एक कृष्ण के बारे में है जो आदि पुरुष है, तो इनके नाम के बराबर या विष्णु के नाम के बराबर या स्वतंत्र कोई नाम नहीं हो सकता। शिव जी का नाम स्वतंत्र नहीं है, हमें तो शायद बराबर दिखाई देगा इतने दूर रहे कहना सब बराबर है, नहीं लेकिन स्वतंत्र थोड़े है। स्वतंत्र अकेले भगवान होते हैं, बाकी सभी भगवान की इच्छा के अनुसार सारी कार्यवाही करते हैं। तो दैट इज द सेकंड ऑफेंस। द थर्ड ऑफेंस इज टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की अवज्ञा करना। आज्ञा है, आज्ञा अवज्ञा नहीं हो सकती। गुरु आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिकता का ही परिचय कराने के लिए बंधे हुए हैं, अन्य किसी चीज के लिए बंधे नहीं। अपना संबंध आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता हमारा एकमात्र सुरक्षा का प्रबंध करता है। भगवान का नाम लेते हमारे जो आध्यात्मिक शक्ति आती है, भौतिक शक्ति को मारो गोली, बहुत आती है बहुत जाती है, हम आप दुर्बुद्धि से तो हम उसमें पड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का परिचय कराने के लिए ही सारी गुरु की आज्ञा होती है कि क्या आप कैसे करो। हाँ हम अपने अपने धीरे धीरे उठने वाले हैं, लेकिन उठाने का तो मौका तो आज्ञा द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा जो आध्यात्मिक है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम नई नई आज्ञा दे देते, नहीं, भगवान एक है, भगवान के बारे में भगवान ने स्वयं जो अपनी इच्छाएं बताई है उसका आज्ञा पालन कराने की कोशिश करेंगे, अन्य तो अपने खिसे में से कोई नई आज्ञा नहीं देते। चौथा अपराध है ये भगवान के नाम का रहस्य सारे वेदों का सार बताया है, इसलिए वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना भगवान के नाम पर अपराध है। इतने सारे शास्त्र इसीलिए व्यासदेव को बनाना पड़ा कि एक एक खोपड़ी अलग अलग काम करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ऑफेंस। द फोर्थ ऑफेंस इज टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन द पर्सुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन। व्यासदेव वॉज सो काइंड इनफ टू एकोमोडेट the fulfillment of all our different kinds of desires through the instructions of the Vedas and the expansions of the Vedic literature like Samhitas, Upanishads, Puranas, Vedanta Sutras and what not. For every different kind of people, somebody will find what is pertaining to him and his success in this materialistic way of life and come out, get liberated and then go back home, back to God. So all these processes have been described. There's nothing left out. Shastra pramana hota hai. Antim shastra pramana hai. Wohi shastra ko anusarne wale guru parampara chalate. Aur isme guru adhikrita prapt karta hai. गुरु परंपरा द्वारा ही अधिकृतता प्राप्त होती है। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट एड ऑफ डिवोशनल सर्विस द इंपोर्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर इट्स यूजलेस। बट पीपल स्टिल हैव फॉल्स ईगो। द फॉल्स ईगो इज कवर्ड either by mode of goodness or mode of passion or mode of ignorance. These egos will make us interpret or understand other way around, as if we are more intelligent than others, therefore we have assumed the authority to interpret the way we want. The conclusion of Shastra is one and the same. And that is going back home, back to God. Through, in this particular age, by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So, either if we think that the holy name is imaginary, it's an offense on the holy name, or we can interpret the holy name, that's also an offense. These people undermine the effect or efficacy of the holy name. So, evidently, if they are simply argumentative and impresses someone devalues the import of the holy name, then evidently he will commit sinful activities even though he is chanting the holy name. He will commit sinful activities on the strength of the holy name. So, this is a complete imposter, or Mayavadis are like that. They commit sinful activity on the strength of the holy name. They are uncontrolled people. Not necessarily that they have control on their senses, or because they are unintentionally, you know, trying to make a show of devotion, or with intention to become God themselves. So we see, and this is pretty falsified environment created by such people, and they evidently keep on committing sinful activities. Because in the world, about 98% is said to be religious, believing something higher, you know, than themselves. Only 2% are atheist. So any believer can be absorbed very easily. But how come they are not making any progress? Many are chanting their respective names given in the literature. But we may not see tangible progress because inadvertently they are committing sinful activities. They don't understand what is sinful activity. Can anybody tell? What is the definition of sinful activity? Any activity is sinful activity which will keep you revolving in the cycle of birth and death. Bodily conception is a sinful conception. But human body has been specifically made in the image of the Lord. So therefore we have to understand what is the special duty of this human body to use it as a medium that will be very conducive to cross over the ocean of birth and death. Srimad Bhagavatam says the importance of the human body, first of all, it is very rare to achieve. And those who have achieved, they are worried, there is a population explosion. So they want to control the human species of life, the big, big countries and big, big giant holders of the property and Ivy League and so much, you know, super intelligent class, they have come together to devise a plan that we will reduce the population by genetic mutation in the food that they will be eating. We will reduce, they will become impotent, they will be having a lot of disease. And who will be at disadvantage? The third world country. So they are calculating that within next 50 years, there will be a population of about 500 million and that will be the happy life ever after. Right now it is over how many billions? Three something? So they want to wipe out at least India and China first. That is a treacherous plan. But we consider human life is so much important because it is very conducive to take up the process of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and cross over. And within this lifetime, the ocean of birth and death. Isn't it very, very beneficial? Which other species of life will give you the benefit? The demigods are stuck with their entanglement in controlling the cosmic affairs. Eh? And the demons have no interest anyway to cross over the material sufferings. Only human beings are left over. They are the best advantage. Right. So, the next is to consider chanting of Hare Krishna Maha Mantra to be one of the ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activity called Karma Kanda. We are taking sankalpa of chanting minimum 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra and follow four regulative principles. This is the vow of austerity. There is no purpose to gain any material advantage in this sankalpa. We are determining to please Lord Krishna by serving through His holy name. Bhagwan ki seva karne ke liye hum ye vrat aaj lete hain. To kya vrat karma kand kehlata hai kya? Hame bhautik ichha hai kya? Ke Bhagwan ki prasannata prapt karne ke liye hum यहां वचन देते हैं, पूछेंगे तो बोलेंगे, हिम्मत से आगे बढ़े हैं, दीक्षा लेने के लिए उत्सुक थे तो अवश्य. तो ये कोई कर्मकांड नहीं है, यहां कोई भौतिक फल की प्राप्ति नहीं होगी. कर्मकांड में हमेशा भौतिक फल की प्राप्ति होती है और फल के बंधन में पड़े रहते हैं, इसलिए हम भवसागर पार नहीं कर पाते कर्मकांड करने से. भक्ति कोई कर्मकांड का विषय नहीं. इसी तरह यह आठवां अपराध को समझना चाहिए. नौवां अपराध है कि अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना. Never preach to faithless person about the glories of the holy name. Kabhi kabhi kehte hain, Maharaj ji, hame to pata hi nahi ki ye faithless hai, faithful hai. How do we know? Okay, go and find out. So be aware. If you, as soon as you find out that he is an atheist, He doesn't have faith. Don't talk more. Just give him prasad and get away. Get away from him. Because we are not going to uselessly chant. Even in Bible it is said, don't chant in vain. Our chanting should be very attentive, not only with only one focal point, that by my calling out of the holy name, Lord Krishna will become happy. Lord Krishna will become happy. Because if he becomes happy, I will become happy. I am a servant. A servant cannot independently become happy without serving the Lord. Right? Our happiness is interconnected. We are dependent upon the Supreme Lord. So, never waste time, money, or an effort of preaching. Don't waste it. You have to calculate immediately. The 10th offense is to maintain material attachment even after understanding so many times the importance of the detachment to be developed. Material attachment is very detrimental. We have to remain at least detached from within rather than outside. Because Rupa Goswami is telling, we have to increase attachment with Krishna, so automatically there will be decrease in material attachment. Material attachment is entangling us, it is suffocating us. We wish to get out, but we can't get out. So there is a trick that if we become internally detached, detachment is always an internal subject, not an external subject. External subject is not detachment, it is called give up. Throw it away. I don't need it. No. We need everything. But we connect our attachment in the service of Krishna, that will fructify as a detachment from the worldly mindedness to Krishna consciousness. So, ये भगवान की महिमा बारंबार समझते हुए भी हम भौतिक आसक्ति बनाते रहते हैं तो हमारी भक्ति में बाधा पहुंचेगी. भगवान का नाम पर अपराध चढ़ेगा. क्या हम भी देखो ना, एक हाथी की तरह निर्मल जल में स्नान करते हैं, बाहर आकर फिर से धूलिट डालते हैं. इट्स लाइक शौच कुंजरवत. वी टेक ए वेरी नाइस बाथ इन वेरी क्लियर वॉटर एंड देन एज सून एज वी कम आउट वी स्टार्ट स्प्रेडिंग द dust on our body like an elephant does. So, भगवान के नाम में निर्मल बनते जाओ, बाद में ऊपर धूली फेंकते जाओगे, क्या हालत है. इसीलिए हम जानबूझकर भगवान के नाम में अपराध चढ़ाते हैं. ये 10 अपराध ध्यान में रखो और कभी भी हम अपराधी न बने. इस 10 में तो काफी सुरक्षा का प्रबंध मिल जाएगा. सबसे ज्यादा ऐसे अपराध कहां होते पता है? जब हम नाम जप में बेध्यान रहते तब. सो टू बी इन अटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र इटसेल्फ इज द मदर ऑफ ऑल द ऑफेंसेस. सो वी हैव टू प्रिवेंट. If we know this, now you know this, so you cannot escape. Oh, Maharaj, I did not know. That's why it's my duty to tell you. The consequences are very, very drastic, more than expenses. Expenses are nothing if we lose. They say, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But our Krishna conscious character is lost, everything is lost. You better believe. If our Krishna conscious character is lost as a devotee, everything is lost. It is very rare achievement. Manushyanam sahasreshu kaschi datati siddhayat yatadam api siddhanam kaschin mam vitti tattvata. Who is trying to make their life perfect anyway? Amongst all the imperfects, hardly anybody endeavors to do. And out of those who are endeavoring, how many become successful? Very few. So devotional service is the culmination of all the belief system in practical aspect. You have to perform your love and devotion uninterruptedly to the Supreme, whomever you want to call. But if that character is not available in your denomination, here it is, Krishna, all beautiful, all attractive. You can chant any name. Prabhupada said, but don't make an excuse, chant. But if you are not getting the result, then please chant Hare Krishna. This is how philosophical persuasion is needed, not a blind conversion. I'm converting otherwise Hindus into bhaktas. But Hindus say, no, we are not converted. We know bhakti. You acknowledge bhakti, but at the same time, you are not knowing. So in that sense, and the other denominations, they do not know the bhakti tattva. So where is the question of conversion? We are informing that here is the Supreme Personality of Godhead by philosophical presentation. That is Krishna. So we have to accept wholeheartedly. No inhibitions are required. That will fulfill the desire of Lord Krishna. He is calling you sarva dharmana parityajya mam ekam sharanam braja. Give up all your different inclinations or conceptions. Actually, they are all misconceptions. If somebody is misconceiving the dead fetus, right? That is called misconception. So similarly, here all that belief system mentally conceived becomes misconception if it does not culminate in Krishna consciousness. So therefore Krishna says, give up all mental misconceptions and just surrender to me. Rest assured that I will deliver you from all the sinful activities. Don't be morose at all. So thank you very much.